सेहत अच्छी रखने वाली गिजाओं के बारे में 16 सवाल जवाब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबियीन अम्मा बाद फऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रजवी दामत बरकातुम लालिया के मलफूजात का तहरीरी गुलदस्ता सेहत अच्छी रखने वाली गिजाओं के बारे में 16 सवाल जवाब। दुआए खलीफाए अत्तार या रब्बल मुस्तफा जो कोई 14 सफहात का रिसाला सेहत अच्छी रखने वाली गिजाओं के बारे में 16 सवाल जवाब पढ़ या सुन ले उसको बीमारियों से महफूज फरमा कर सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा और उसको माँ बाप समेत बेहिसाब बख्श दे आमीन बिजाही खातमिन नबीजीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। दुरूद शरीफ की फजीलत फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरोज़े क़यामत लोगों में से मेरे करीब तर वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सवाल, रोजाना सुबह नाश्ते में अंडे खाना सेहत के लिए कैसा है? जवाब, वो देसी मुर्गी जो छूटी फिरती है उसके अंडे अच्छे होते हैं लिहाजा उसके देसी अंडे खाए जाएं। अंडा वैसे बड़ा मुफीद है और इसमें काफी गिजाई अज्जा हैं। सफेदी के अलग खवास हैं, जर्दी के अलग फवाइद हैं। बंदों की अपनी अपनी कैफियत होती हैं। अगर मुवाफिक हो तो जर्दी और सफेदी दोनों खाई जा सकती हैं। दोनों इकट्ठे मुवाफिक ना हो तो जिन्हें सफेदी मुवाफिक आती हो वो सफेदी खाएं और जिन्हें फकत जर्दी मुवाफिक आती हो वो जर्दी खाएं। उम्र के साथ साथ हाजमे की कारकर्दगी में फर्क पड़ता है लिहाजा जिसे एक अंडा हजम हो जाता हो वो एक खा ले और जिसे दो तीन भी हजम हो जाते हो वो भले दो तीन खा ले। हर एक की जिस्मानी कैफियत अलग अलग होती हैं। बाद ऐसे भी होंगे जिन्हें अंडा खाते ही खारिश शुरू हो जाती होगी या अंडा पेट में कब्जा जमा लेता होगा और हजम ना होने के सबब परेशान करता होगा तो अपनी अपनी कैफियत के मुताबिक अंडा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर किसी को पूरा अंडा हजम नहीं होता तो वो आधा खा ले, आधा भी ना चलता तो चौथाई खा ले। बहरहाल कुछ ना कुछ अंडा खाना चाहिए कि ये भी अल्लाह पाक की नेमत है और इसके भी अपने फवाइद हैं। सवाल, बाज लोग दूध में कच्चा अंडा डालकर पीते हैं, क्या ये सेहत के लिए मुफीद है? जवाब, दूध और अंडा दोनों चीजें मुफीद हैं। लिहाजा जिसको दूध और अंडा हजम हो जाता हो तो वो दोनों को मिलाकर इस्तेमाल कर सकता है बल्कि मुमकिन है कि जिसे अकेला अंडा खाने से साइड इफेक्ट यानी मनफी असरात होते हैं तो दूध के साथ मिलाकर खाने से इसमें कमी आ जाए। दूध और अंडा दोनों एक साथ मुवाफिक हैं या नहीं इसकी मालूमात की दो सूरतें हैं। एक ये कि अपना तजर्बा हो कि अंडा और दूध दोनों को मिलाकर इस्तेमाल करना उसे फायदा देता है या नुकसान। दूसरी सूरत यह है कि अपने तबीब से मशवरा कर लिया जाए। याद रहे कि डॉक्टर हमेशा एक रखना चाहिए। कई डॉक्टरों के पास फिरने वाला कामयाब नहीं होता क्योंकि बाज़ दवाएं साइड इफेक्ट यानी मनफी असरात भी करती हैं। एक डॉक्टर मखसूस कर लेंगे तो उसको मरीज की कैफियत पता होगी कि कौन सी दवा इसे चलती है और कौन सी दवा से इसे एलर्जी हो जाती है, किस दवा से इसके पेट में गड़बड़ हो जाती है और किस दवा से इसकी नींद उड़ जाती है वगैरह वगैरह। बहरहाल अपने तबीब से मशवरा कर लिया जाए कि मुझे अंडा खाना मुफीद है या नहीं। सवाल, खाने में समंदरी नमक इस्तेमाल किया जाए या कान का नमक जो डीलर मुनाफे के लिए नमक में मिलावट करके बेचते हैं, इनके बारे में आप क्या फरमाते हैं? जवाब, मेरी नाकिस मालूमात के मुताबिक पहाड़ी नमक जिसे लाहौरी नमक भी कहते हैं ये ज्यादा मुफीद है। हम लोग बड़ा पीस लेकर इसे कूट कर इस्तेमाल करते हैं। लाहौरी नमक पिसा हुआ भी मिलता है। लेकिन इसमें कंकर पत्थर का मिक्स होना मुमकिन है, इसलिए कि मिलावट करने वाले तो पानी में भी मिलावट करके मिनरल वाटर के नाम पर बेचते हैं। तरक्की याफ्ता मुमालिक में सख्ती होती है जिसके सबब वहां खालिस पानी दस्तियाब हो जाता है, लेकिन कम तरक्की याफ्ता मुमालिक में मिलावटें ज्यादा होती हैं, लिहाजा मिलावट करने वाले नमक में भी पत्थर वगैरह पीस देते होंगे। अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे कि इतनी सस्ती चीज में भी मिलावट करते हैं और पैसे खींचने के लिए लोगों की जानों से खेलते हैं। नमक में अगर मिलावट को चेक करना चाहें तो थोड़ा सा नमक पानी में घुला लें। अगर नमक घुलने के बाद कुछ जर्रात पानी की तह में नजर आए तो ये मिलावट वाला कचरा होगा जो पानी में घुला नहीं। सवाल, क्या हर मौसम में गर्म पानी ही पीना चाहिए? नीज, क्या गर्म पानी हर शख्स के लिए मुफीद है? जवाब, तिब्बी तौर पर गर्म पानी पीना मुफीद है। एक कॉल के मुताबिक सर्दियों में गर्म पानी पीने से बीमारियों से तहफ्फुज़ हासिल होता है। मुमकिन है कि अपनी अपनी तबीयत के मुताबिक ऐसी चीजें फायदा करती हों, लिहाजा ये भी हो सकता है कि किसी को गर्म पानी से फायदा ना हो। इस तरह का इलाज अपने तबीब यानी डॉक्टर के मशवरे से करना मुफीद होता है। तबीब एक ही होना चाहिए कि इसे मरीज के मिजाज का पता होता है कि कौन सी दवा इसे मुवाफिक है और किस से साइड इफेक्ट यानी मनफी असर हो जाता है। नए नए तबीबों के पास जाएंगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा। बहरहाल उमूमी तौर पर गर्म पानी पीना फायदेमंद है। सवाल, अक्सर देखा है कि आप खाना शुरू करने से कबल पानी पीते हैं, इसकी क्या वजह है? जवाब, अतिब्बा ने हिफ्जाने सेहत के चंद उसूल बताए हैं जिनमें से एक ये भी है कि हर चीज को उसके मुनासिब वक्त ही में खाना फायदा देता है, जबकि इसमें बे एहतियाती मुजिरे सेहत हो सकती है। इसी उसूल के पेश नजर खाने से कबल पानी पीने को मुफीदे सेहत बताते हैं। तिब्बी नुक्ते नजर से फल खाने से पहले भी पानी पीना मुफीद है, इसी तरह चाय से पहले पानी पीना भी फायदेमंद है। सवाल, क्या खाना खाने से पहले पानी पी सकते हैं? जवाब, जी हाँ, खाना खाने से पहले पानी पीने में हर्ज नहीं, क्योंकि सुना और पढ़ा है कि खाने से पहले पानी पीने से आंतें रवा हो जाती हैं। जो लोग भारी गिजाएं अपने पेटों में डालते हैं और कबाब समोसों पर झपटते हैं वो डॉक्टरों के यहाँ धक्के खाते फिरते हैं। सवाल, फल खाना खाने से पहले खाना चाहिए या बाद में? जवाब, उसूलन फल यानी फ्रूट भी खाने से पहले खाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ आजकल फल उमूमन खाने के बाद खाया जाता है। इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, अगर फल हो तो पहले वो पेश किए जाएं कि तिब्बी लिहाज से उनका पहले खाना ज्यादा मुवाफिक है। ये जल्द हजम होते हैं, लिहाजा इनको मैदे के निचले हिस्से में होना चाहिए। और कुरान पाक से भी फल के मुकद्दम यानी पहले होने पर आगाही हासिल होती है। चुनाचे कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वफा की हतिम मिम्मा यतखय्यरून, पारा 27 सूरे वाकया आयत 20, तर्जमाए कंजुल ईमान, और मेवे जो पसंद करें। फिर इसके बाद फरमाया, वल्लाहमी तौयरिम मिम्मा यश्तहून, पारा 27 सूरे वाकया आयत 21, तर्जमाए कंजुल ईमान, और परिंदों का गोश्त जो चाहें। फिर फलों के बाद खाने में गोश्त और सरीद को मुकद्दम करना अफजल है, यानी फलों के अलावा दीगर खाने हों तो पहले फल खाएं, फिर गोश्त और सरीद। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं, खाने से पहले तरबूज खाना पेट को खूब धो देता है और बीमारी को जड़ से खत्म कर देता है। सवाल, सेब खाने के कुछ फवाइद इरशाद फरमा दीजिए। जवाब, जनवरी 2017 के माहनामा फैजान मदीना के सफा नंबर 29 पर सेब के फवाइद कुछ इस तरह बयान किए गए हैं। फलों में सेब को सबसे ज्यादा तवानाई बख्श यानी ताकत देने वाला समझा जाता है। ये एक खुश जायका और एनर्जी से भरपूर फल है। सेब यानी एप्पल के बारे में कहा जाता है कि नाश्ते में एक सेब खाइए, कभी डॉक्टर के पास न जाइए। सेब के बेशुमार फवाइद में से चंद पेशे खिदमत है। 1. सेब दिलो दिमाग को फरत पहुंचाता है। 2. दिल को ताकत देता और घबराहट दूर करता है। 3. सेब खून पैदा करता और चेहरे का रंग निखारता है। 4. सेब जिगर यानी लीवर की इसलाह करता, मेदे को ताकत देता है। 5. निहार मुंह यानी खाली पेट, सेब दूध के साथ सेहत बख्श है। 6. सेब का जूस पेट और आंतों के जरासीम मारता है। 7. सेब दांतों और मसूड़ों को मजबूत करता है। 8. पेचिस, टाइफाइड, तपेदिक और खांसी में मुफीद है। गले की टीबी को तपेदिक कहा जाता है और पेचिस मोशन टाइप का पेट का मरज है जिसमें बाज़ोकात खून और पीप भी आता है। 9. सेब का मुरब्बा दिलो दिमाग को मजबूत करता है। 10. सेब नजर और हाफिजा तेज करता है। 11. सेब पथरी की रोकथाम में अहम किरदार अदा करता है। 12. कच्चा सेब गर्म करके वर्म यानी सूजन पर लगाना मुफीद है। 13. सेब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता और कम करता है। 14. एक तहकीक के मुताबिक सेब हर तरह के कैंसर को रोकता है। 15. सेब का सिरका हिचकियों की रोकथाम, गले की तकलीफ में राहत, नजला जुकाम से आराम देता और वजन में कमी करता है। फलों और खाने पीने की अशिया पर रंग किया जाता है। धोखेबाज लोग सेब के छिलकों पर लाल रंग चढ़ा देते हैं। सेब के छिलके पर अगर वाकई रंग किया गया हो तो उसे उतार कर खाना ही मुफीद है, वरना सेब को छिलके समेत खाना चाहिए कि छिलके के नीचे विटामिन की तह होती है। मसनू रंग किए गए सेब खरीदने से बचना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमें ये पहचान नहीं हो पाती कि किस सेब पर रंग किया गया है। शायद सेब पर कपड़ा रंगने का रंग लगाया जाता होगा इसलिए कि फूड कलर महंगा होता है। इसी तरह हम जो मुख्तलिफ रंग बिरंगी चीजें खाते हैं उनमें आम तौर पर कपड़े का रंग डाला जाता है। चुनाचे मुझे एक कपड़ों के रंग के ताजिर इस्लामी भाई ने बताया था कि गुलाबी फूड कलर बहुत महंगा होता है। मेरी दुकान पर अगर कोई खाने पीने की चीजें बेचने वाला गुलाबी कलर लेने के लिए आता है तो मैं उम्मत की खैरख्वाही की नीयत से उसे नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे लोग खाने पीने की चीजों में ये रंग डालते हैं और यूं लोगों को कपड़ों का रंग खिलाते हैं। हमारे यहाँ जो लाल गुलाबी चीजें और मुख्तलिफ शरबत मिलते हैं उनमें ये कपड़े रंगने वाला कलर शामिल किया जाता है, मगर हम यकीनी तौर पर ये नहीं कह सकते कि फुला शरबत या फुला गिजा में नकली कलर इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह टॉफियों और चॉकलेटों के बारे में मुझे एक दुकानदार ने बहुत पहले बताया था कि ये फूड कलर पकड़ती ही नहीं है, ये सिर्फ कपड़ों का रंग पकड़ती हैं। इसलिए इनमें और रंग बिरंगे पापड़ों में कपड़ों का रंग इस्तेमाल किया जाता होगा। घर में पकाई गई चीजें खाने में ही आफियत है। बहरहाल बाजार के खाने खाने के बजाय घर में पकाई जाने वाली चीजें खाने में ही आफियत है। अपने बच्चों को भी सेहत के लिए नुकसानदेह तरह तरह के रंगीन चिप्स खाने से रोकिए। याद रखिए, अगर कोई गली सड़ी टॉफियां बनते हुए देखे तो उसे उल्टी हो जाए, क्योंकि उन्हें बनाते हुए सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखा जाता जिसके बाइस उन पर कीड़े मकोड़े चल फिर रहे होते हैं। हम शौक से ऐसी ऐसी चीजें खाते हैं कि अगर इन्हें बनता हुआ देख लें तो हमें इनसे घिन आ जाए, क्योंकि इन्हें बनाते वक्त बनाने वालों का पसीना और थूक इनमें गिर रही होती है और जहां ये चीजें बनती हैं वहां इर्द गिर्द चूहे दौड़ रहे होते हैं। कहीं कहीं सफाई सुथराई पर तवज्जो दी जाती होगी मगर सफाई सुथराई का मयार न होने के बराबर है। दीगर चीजों की तरह खाना भी घर ही का खाना चाहिए कि घर की खवातीन जो खाना बनाती हैं उन्हें खुद भी ये खाना होता है और बच्चों को भी खिलाना होता है, इसलिए ये इनका ये जहन बना होता है कि वो खाने की चीजों को अच्छी तरह धोएं और सफाई रखें, तो यूं घर के खाने का मयार बना होता है। होटलों के खाने का टेस्ट अगरचे बहुत अच्छा होता है मगर वो गैर मयारी होते हैं। दीगर चीजों की तरह तैयार गर्म मसाले का मामला भी है कि गर्म मसाले है कि जो पिसे हुए डब्बे आते हैं उनमें खुदा जाने क्या क्या चीजें पिसी हुई होती हैं। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो खानों में तैयार गर्म मसाले नहीं डालते, वो अलग अलग मसाले खरीदते, इन्हें पीसते और फिर इस्तेमाल करते हैं। हर कंपनी गलत चीज बनाती हो ये जरूरी नहीं, मगर आजकल मिलावट और धोखा दही का दौर है। शायद यही वजह है कि हम इतनी बीमारियों और परेशानियों में मुब्तला हैं और हमारा सुकून बर्बाद है। शायद ही कोई ऐसा शख्स मिलेगा कि जो ये कहे मैं सेहतमंद हूँ और मुझे कोई गम नहीं है। तकरीबन सभी लोग परेशान हैं। कोई बे औलादी की वजह से परेशानी में है तो किसी को उसकी औलाद ने सता कर रखा हुआ है, कोई बीमार पड़ा है तो किसी को कर्जे ने जकड़ा हुआ है, किसी की रकम कोई दबा कर बैठ गया है तो किसी के मालिक मकान ने नाक में दम कर रखा है और किसी के पड़ोसी ने उसका जीना धूभर किया हुआ है। तो यूं हर तरफ बद अमनी फैली हुई है और लोगों की नीयतें और किरदार खराब हो चुके हैं। अल्लाह पाक हमें अपने अच्छे और प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अच्छा कर दे। याद रहे, अगर अपना ये जहन बना लिया जाए कि अब हमने मिलावटें करने, गालियां बकने, झूठ बोलने, गीबतें करने और नमाजें कजा करने से बचना है और मुसलमानों की खैर ख्वाही के बारे में सोचना है तो इंशा अल्लाह अच्छाई फैलेगी और हम अच्छाई फैलने का सबब बनेंगे। इसकी बरकत से दुनिया में भी अमन कायम होगा और हमें कब्रो हश्र में भी इंशा अल्लाह अमन मिलेगा। इसी तरह अगर हम सब मिलकर दावत इस्लामी को दुनिया में आम कर दें और हर तरफ सुन्नतों की धूमधाम कर दें तो इंशा अल्लाह अमन कायम हो जाएगा, वरना बड़ी बड़ी बातें करने और अखबारों में बयानात दाग देने से काम नहीं होता, काम करने से ही होता है। सवाल, बुढ़ापा आने से पहले ऐसा क्या करें कि बुढ़ापे में कम से कम तकालीफ का सामना करना पड़े। जवाब, ढल जाएगी ये जवानी जिस पे तुझको नाज है। जवानी में 20-22 साल तक दूध पीना ज्यादा मुफीद होता है कि इसमें कैल्शियम होता है जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। जिन लोगों के जोड़ों और हड्डियों में दर्द होता है हो सकता है वो बचपन में दूध ना पीते हों। मैं बचपन में 1 रुपए का भैंस का खालिस दूध लाता था, हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत पानी भी मिलाते हों, मगर हमारे सामने दूध धोते थे और दूध पर झाग बनती थी। दूध बेचने वाला झाग हटाकर दूध नापते फिर झाग मुफ्त डाल देते थे। हालांकि झाग में वजन नहीं होता, बस इससे खरीदार पर एक नफ्सियाती असर होता था। उस दूध पर मलाई की ऐसी तय जमती थी कि अभी उसे याद करें तो मुंह में पानी आ जाए। हमारे दौर में भैंसों के बाड़े शहर में होते थे मगर जब आबादी बढ़ी तो लोगों को तकलीफ से बचाने के लिए भैंसों के बाड़े भैंस कॉलोनी मुंतकिल कर दिए गए। ये सही किया है, उस वक्त इतनी खयानत नहीं थी मगर फी जमाना खयानत बहुत बढ़ गई है। बहरहाल जवानी में दूध पिए, मेदे चिकनाहट और मिठास वाली चीजों से परहेज करें, इंशा अल्लाह बुढ़ापे में सेहतमंद रहेंगे। सवाल, नारियल खाने और उसका तेल लगाने के क्या फायदे हैं? जवाब, मिश्री यानी चीनी की एक किस्म है, इसके साथ हर रोज निहार मुंह यानी खाली पेट 1 तोला खोपरा खाना बीनाई को कुव्वत देता, पेट को नरम करता और भूख बढ़ाता है। खोपरे का तेल सर में लगाने से बाल बढ़ते हैं और ये दिमाग के लिए भी मुफीद है। सवाल, कलेजी खाने के फायदे हैं या नुकसान, इस हवाले से आपके क्या तजुर्बात हैं? जवाब, कलेजी अच्छी चीज है, खाई जाती है और हलाल भी है। कलेजी कोलेस्ट्रॉल से भरपूर होती है, लिहाजा जिसको दिल के अमराज हो या कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो वो कलेजी खाने से बचे। कलेजी में कार्बोहाइड्रेट भी ज्यादा होता है, लिहाजा जिसे गैस की बीमारी हो वो भी इसे खाने से बचे। उमूमन गाय, बकरे और मुर्गी की कलेजी खाई जाती है, मगर जिसे यूरिक एसिड का मर्ज हो वो रेड मीट यानी बकरे, गाय, भैंस या ऊंट का गोश्त या कलेजी खाने से भी बचे। सवाल, गर्म मौसम में क्या एहतियात करनी चाहिए? जवाब, गर्मियों के मौसम में पानी पीने पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए पानी की मकदार मुकर्रर कर लीजिए, मसलन 12वीं की निस्बत से कम अज कम 12 गिलास पिए। चूंकि सख्त गर्मी के सबब पसीने निकल रहे होते हैं तो हो सकता है 12 गिलास पानी भी ना काफी हो, लिहाजा खूब अच्छी तरह पानी पिया जाए। 12 गिलास आधे आधे भरकर नहीं बल्कि पूरे भरकर पीने हैं। मेरे पास एक प्याला है, मुझे लगता है इस प्याले में 2 गिलास पानी आ जाता होगा। मैं उस प्याले को भरकर एक वक्त में एक बार पानी पी लेता हूँ। इफ्तार के वक्त 1.5-2 प्याले पानी पीता हूँ, खाने के दौरान भी पानी पीता हूँ, फिर गिजाओं में भी पानी होता है। यूं मेरी पानी पीने की आदत बनी हुई है। नीज मदनी मुजाकरे से फरागत के बाद मैं स्टीमर भाप लेने वाली मशीन से भाप भी लेता हूँ। ये मशीन बहुत फायदेमंद है, जो मुझे मेरे बड़े बेटे हाजी उबैद रजा ने दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे भाप लेने का फायदा नजर आ रहा है। यूं पानी पीने की तरह मेरी भाप लेने की भी आदत बन गई है और अब मैं इस आदत को छोड़ना नहीं चाहता। याद रहे, स्टीमर ऑटोमेटिक मशीन है जो चलने के कुछ देर बाद भाप देना शुरू करती है। आप अपनी आसानी के लिए स्टीमर से भाप लेने का वक्त मुकर्रर कर लीजिए, मसलन 5, 7 या 10 मिनट तक मुंह और नाक के जरिए गर्म भाप लीजिए। मुकर्रा वक्त खत्म होते ही ये मशीन खुद ब खुद बंद हो जाएगी, जिनसे हो सके वो भाप लिया करें। सवाल, कोई ऐसी गिजा बताइए जिसे खाकर हम सर्दियों के दिनों में सेहतमंद रह सकें। जवाब, मकतबतुल मदीना के रिसाले मेथी के 50 मदनी फूल के सफा नंबर 6 पर है। मेथी के 50 मदनी फूल ये रिसाला अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुल आलिया का है, जिसके 12 सफहात हैं। इस रिसाले में मेथी के फवाइद, इसके जरिए दायमी कब्ज और पेट की बीमारियों का इलाज, कमर और जोड़ों के दर्द का इलाज, मुंह के छालों का इलाज और मेथी के कहवे के मदनी फूल और मेथी के जरिए मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज का तरीकेकार भी बयान किया गया है। मकतबतुल मदीना के रिसाले मेथी के 50 मदनी फूल के सफा नंबर 6 पर है। सर्दियों में रोजाना खाने के बाद पानी से मेथी दाने छोटा चम्मच आधा इस्तेमाल कर लेने से सर्दियों की अक्सर बीमारियों से हिफाजत होती है। अलबत्ता हर इलाज अपने तबीब के मशवरे से किया जाए, ऐन मुमकिन है कि मेथी दाने किसी की तबीयत के मुवाफिक ना हो। सवाल, खाली पेट मीठा खाने का क्या फायदा है? नीज मिठास हासिल करने के लिए सफेद चीनी का इस्तेमाल करना कैसा है? ये सवाल शुबा मलफूजाते अमीर अहले सुन्नत की तरफ से कायम किया गया है, जबकि जवाब अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुल्ला आलिया का ही अता किया हुआ है। जवाब, खाली पेट खजूर खाना मुफीद है, नीज आंखों के लिए फायदेमंद भी है। मेदे में मौजूद एक आंत ऐसी है जो मीठा कबूल करती है, लिहाजा इफ्तार में खजूर खाइए या पानी पीजिए, कि पानी आंतों को खोलने के लिए बेहतरीन काम करता है। अगर नीम गर्म पानी मुयस्सर हो तो ज्यादा अच्छा है। खुशबूदार और केमिकल्स वाले बाजारी शरबत पीने से बचिए, कि ऐसे शरबत सेहत कुश यानी सेहत बर्बाद करने वाले होते हैं। मैं भी ऐसी चीजों से काफी दूर रहता हूँ, अलबत्ता कभी कभार थोड़ा सा चख लेता हूँ। अगर शरबत पीना ही है और अल्लाह पाक ने माल और दौलत से नवाजा है तो दूध में चम्मच दो चम्मच असली शहद मिलाकर पी लीजिए, कि ये सेहत बख्श मशरूब है, یا پانی میں لیمو نچوڑ لیجئے، کہ یہ گرمی کا مفید اور بہترین شربت ہے۔ نیز میٹھا کرنے کے لیے سفید چینی کے بجائے شہد یا گڑ ڈال لیجئے، کیونکہ کیمیکل سے بنی ہوئی سفید چینی سے میں متفق نہیں ہوں کہ اس کے بہت نقصانات ہیں۔ نیز کہنے والوں نے اسے وائٹ پوائزن اور سویٹ پوائزن یعنی سفید زہر اور میٹھا زہر کہا ہے۔ لیکن یاد رہے، میں سفید چینی کو ناجائز نہیں کہتا، بلکہ ضرورتاً استعمال بھی کر لیتا ہوں۔ البتہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ سفید چینی سے بچا جائے۔ اسی وجہ سے ہمارے یہاں میٹھی چیزوں میں سفید چینی کے بجائے گڑ استعمال کیا جاتا ہے۔ بالفرض گڑ میسر نہ ہو تو مجبوراً سفید چینی استعمال کی جاتی ہے۔ ہاں کبھی کسی دوست یا رشتہ دار کے گھر سے کوئی میٹھا آئٹم آ جائے تو بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سوال، کتنا میٹھا کھانے سے آنت کو تسکین ہوتی ہے؟ جواب، اس کی مقدار تو نہیں لکھی کہ کتنا میٹھا کھانے سے آنت کو تسکین ملتی ہے، مگر زیادہ دیر بیٹھے رہنے والوں کو میٹھا کم ہی کھانا چاہیے۔ اگر یہ میٹھا آنت کے بجائے نس میں چلا گیا تو آزمائش ہو جائے گی۔ ویسے بھی بلڈ شوگر کی بیماری بہت عام ہے۔ عموماً ہم لوگ زیادہ مشقت والے کام نہیں کرتے، لیکن جو مشقت والے کام کرتے ہیں ان کو میٹھا ہضم ہو جاتا ہے۔ مثلاً مزدوری کرنے والے، بھاگ دوڑ کرنے والے یا لوہار وغیرہ۔ یہ لوگ تو کڑا ہی گوشت بلکہ کچا گوشت تک کھا جاتے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بیرون ملک پاکستان سے باہر کسی ملک کی بات ہے، میں ایک اسلامی بھائی کے گھر کھانے پر گیا تھا۔ انہوں نے کافی ساری مٹھائی رکھی ہوئی تھی۔ ان کے والد صاحب فرما رہے تھے کہ میں یہ ساری مٹھائی اکیلا کھا لیتا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ ان کی عمر 60 سال سے کم ہوگی۔ چونکہ ان کا لوہار کا کام تھا تو ان کی مٹھائی ہضم ہو جاتی ہوگی۔ سوال، اگر کوئی انسان موٹا ہے اور وہ پتلا ہونا چاہتا ہے تو وہ ایسا کون سا طریقہ اپنائے جس سے پتلا ہو جائے؟ جواب، اگر کوئی انسان موٹا ہے اور وہ پتلا ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے لپڈ پروفائل ٹیسٹ کروائے، کیونکہ بسا اوقات انسان اپنا وزن کم کرتے کرتے دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ انسان خود سے ہی اپنی غذا آہستہ آہستہ کم کر دے۔ مثلاً پہلے 2 روٹی کھاتا تھا تو اب 1/4 حصہ روٹی کا کھانا کم کر دے، اور اتنی غذا کھائے کہ کمزوری بھی محسوس نہ ہو اور کچھ نہ کچھ بھوک بھی باقی ہو۔ میٹھی، چکناہٹ اور میدے سے بننے والی چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے، کہ یہ چیزیں عموماً صحت کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ یوں ہی جو چیزیں بدن میں وزن کو بڑھاتی ہیں، مثلاً آلو وغیرہ، یہ بادی چیزیں ہیں، ان سے بھی پرہیز کرنی چاہیے۔ بعض لوگ ٹھنڈی چیزوں کے شوقین ہوتے ہیں، اگر وہ بھی اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو انہیں بھی ٹھنڈی چیزیں کھانے سے بچنا چاہیے۔ مشقت والا کام کرنے والوں کو عموماً پرہیز نہیں کرنا پڑتا۔ جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں یا بھاری بھاری سامان اٹھا کر گاڑیوں میں لوڈنگ کرتے ہیں، انہیں عموماً کسی بھی چیز سے پرہیز نہیں کرنا پڑتا۔ ایسے لوگ لکڑی اور پتھر بھی کھائیں گے تو وہ بھی ہضم ہو جائیں گے۔ جو لوگ اس طرح کے وزنی کام نہیں کرتے، صرف کھا کر بیٹھ جاتے ہیں، انہیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جب بھی کسی چیز کو تیل میں تلا جاتا ہے تو وہ تیل اس چیز کو اپنے اندر ایک طرح سے کوٹنگ کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا ہضم ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب یہ ہضم نہیں ہو پاتا تو انسان کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے اور انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ ہر ایک کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے۔ آمین۔ بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔